सुप्रभात प्रिय बच्चों, मैं प्रतिभा रोकड़े परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय 3 तारापुर से आज आपके समक्ष प्रेमचंद के फटे जूते इस पाठ का सारांश प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रेमचंद के फटे जूते इस पाठ के लेखक है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी ने जिस प्रसिद्ध व्यक्तित्व प्रेमचंद इनके विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है, सर्वप्रथम हम उनका परिचय जानेंगे। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में बनारस में हुआ। उनका मूल नाम था धनपत राय। प्रेमचंद इनका जो बचपन था वह अभावों में बीता। अभाव यानी उन्हें सभी तरह से अनुकूल वातावरण नहीं मिल सका और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, यानी अपना इस्तीफा दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। हम में से बहुत लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति काल में बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों ने अपने नौकरी का त्याग करके इस देश के लिए अपना बलिदान दिया है, देश के लिए, देश की स्वतंत्रता कार्य के लिए अपना योगदान दिया है। सन 1937 में इस महान साहित्यकार कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद जी का साहित्य जो है कथा साहित्य, वह संसार में बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बातों को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन का एक प्रमुख विशेषता है। और हरिशंकर परसाई इनके विषय में अब हम जानेंगे। हरिशंकर परसाई यह एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार है। इनका जन्म 22 अगस्त सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद में जमानी गांव में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में हुई। उन्होंने नागपुर से हिंदी में एमए किया और अध्यापन कार्य करने लगे। सन 1947 से लेखन कार्य में जुट गए और जबलपुर में उन्होंने जो वह वसुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, जिसकी काफ़ी सराहना हुई। उनका निधन सन 1995 में हो गया। रचना परिचय में अगर देखा जाए तो हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, यह कहानी संग्रह। उपन्यास में उन्होंने रानी नागफनी की कहानी तट की खोज यह लिखा है और निबंध संग्रह में तब की बात और थी, भूत के पाँव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताजीब, शिकायत मुझे भी है और अंत में। व्यंग संग्रह में इनके वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरथा हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर आदि। परसाई जी की अगर विशेषताएं देखी जाए तो यह मूलतः व्यंग लेखक हैं और वे अपने व्यंग से पाठकों को एक और गुदगुदाते हैं तो दूसरी ओर भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी, इस पर लिखे व्यंगों द्वारा समाज में व्याप्त कुरीतियों को करारी चोट करते हैं। अपने लेखन में उन्होंने सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक पाखंड को विषय बनाया है। उन्होंने लेखक के माध्यम से भ्रष्ट नेताओं, समाज के शोषकों पर व्यंग करते हुए उनके कारनामों को आम जनता के सामने लाने का प्रयास किया है। यह बात सच्ची भी है कि कलम में बहुत बड़ी ताकत होती है और उसके माध्यम से उन्होंने ऐसे जो भ्रष्ट लोग हैं उन्हें समाज के सामने लाने का प्रयास किया है। हरिशंकर परसाई ने सरस एवं सरल भाषा में व्यंगात्मक शैली में लेखन कार्य किया। भाषा में हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया हुआ है। शब्दों का इतनी कुशलता के साथ किया हुआ प्रयोग भाषा इसके पाठक के मन को छू जाती है। इनकी हास्य एवं व्यंगात्मक शैली पाठक को बांधे रखती है, उनसे जोड़े रखती है। पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ में सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद जी जो है, इनकी वेशभूषा तथा उनके जूतों के माध्यम से
एक ओर जहां प्रेमचंद सादगीपूर्ण उच्च विचारों को के पाठकों के सामने प्रस्तुत किया गया है, वही समाज की स्वार्थपरता, अवसरवादिता, दिखावटीपन, दोगले चरित्र और धोखेबाजी की प्रवृत्ति पर करारी चोट की गई है। फोटो में प्रेमचंद के जूतों को देखकर ऐसा लगता है कि सामाजिक बुराइयों से लड़ते लड़ते ही उनके जूते की यह हालत हो चुकी है। सभी लोग, जो भी आम जनता भी, जब हम जूते चप्पल खरीदते हैं तो वह अच्छे से अच्छी अवस्था में ही होते हैं, अच्छे से अच्छे गुणवत्तापूर्ण ही होते हैं। यहाँ पर जब हम उनका इस्तेमाल करते हैं तो फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। किंतु जब हमें किसी कार्यक्रम में प्रस्तुत होना है या फिर जब हमें अपनी तस्वीर खींचवानी है, तब हम उनका इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद जी ने जब अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवाई, तब वह उन्हें जूतों के साथ अपनी पत्नी के साथ बैठ गए और फोटो में उन्होंने कुर्ता धोती पहने हुए तथा सिर पर टोपी लगाई है। लेखक उनका वर्णन करते हैं कि कनपट्टी चिपकी, गालों की हड्डियां उभरी तथा चेहरे पर घनी मूछें हैं, पांव में कैनवस के बेतरतीब बंद वाले जूते हैं जिसकी लोहे की पत्री गायब हो चुकी है, उन्हें किसी तरह बांध लिया गया है और उनका एक जूता जो है वह फटा हुआ है, जिसमें से पैर की उंगली दिख रही है। अब यह लेखक सोचते हैं कि यदि यह उनकी फोटो की पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। लोग फोटो खींचने के लिए अच्छे से अच्छे दिखने का प्रयास करते हैं, अच्छे से अच्छे वस्त्र आभूषण पहनने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी बात उन्हें प्रेमचंद जी के विषय में स्पष्ट नहीं हुई, समझ में नहीं आई। फिर यहाँ हरिशंकर परसाई जी सोचते हैं कि साहित्य के इस पुरखे को अपने जूते फटे होने का जरा भी एहसास नहीं है। क्या क्षणिक वो वह भूल गए थे कि उनका जूता फट चुका है। कोई भी लज्जा या झेप नहीं है, क्योंकि चेहरे पर बड़ी बेपरवाही भरा विश्वास है। और हाँ, कहा भी जाता है कि तस्वीर खिंचवाते वक्त हमारे चेहरे पर हास्य होना, एक स्माइल होना बहुत आवश्यक होता है, जो कि एक बेपरवाही भरा विश्वास उन्हें प्रेमचंद जी के चेहरे पर दिखाई देता है। उनकी अधूरी मुस्कान देखकर लेखक सोचते हैं कि यह मुस्कान नहीं है, उसमें उपहास है, व्यंग छुपा है। अब एक लेखक ही जान सकते हैं किसी के मन के भावों को। ऐसा लगता है कि फोटो खिंचाने को बहुत इच्छुक नहीं होंगे। हाँ, कभी ऐसे भी हुआ होगा कि वह समय उनके लिए उचित नहीं होगा फोटो खिंचवाने के लिए, या फिर वो इच्छुक नहीं थे। ऐसे ही उनकी पत्नी ने उन्हें आग्रह किया होगा और इस आग्रह को वह टाल नहीं पाएंगे, इसलिए वह अच्छा कहकर फोटो खिंचवाने के लिए बैठ गए। ऐसा समझने का प्रयास किया है हरिशंकर परसाई जी ने। इससे अच्छा तो लेखक को लगता है कि प्रेमचंद जी यहाँ पर मना ही कर देते थे। लेखक फोटो को देखते देखते उनके क्लेश को भीतर तक महसूस करने की स्थिति में, इस स्थिति को समझते हुए अब रोने की स्थिति में आ जाते हैं। वह सोचते हैं कि लोग फोटो खिंचाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, जूते, कपड़े, कोट, यहाँ तक कि दूसरों की बीवी भी उधार मांग लेते हैं। भले ही लेखक ने यहाँ पर व्यंग्यात्मक शैली में कहा है, कहने का तात्पर्य यह है कि आजकल लोग खुद को अच्छा दिखाने के लिए, ये जो मेकअप शब्द का हम प्रयोग करते हैं इसका भी इस्तेमाल करते हैं, जो पार्श्वभूमि होती है उसका भी विचार अधिक करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद जी के बर्ताव में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती। लेखक कहते हैं कि लोग इत्र लगाकर फोटो खिंचवाते हैं, वह ऐसा सोचते हैं कि फोटो में खुशबू आ जाए। कहना यह है कि अधिक से अधिक अच्छे दिखने की कोशिश करते हैं और गंदे से गंदे आदमी भी अच्छी तरह से फोटो आए, इस प्रकार का प्रयास करते हैं। और प्रेमचंद जी जो है वो तस्वीर को महत्व देते ही नहीं। लेखक का ऐसा मानना है कि आज टोपी जूते से सस्ती है और सब जब उन्होंने यह फोटो खिंचाया तब भी सस्ती रही होगी। टोपी की कीमत देखी जाए तो जूतों से कम ही होती है और उस जमाने में भी कम होगी। ऐसा लेखक को लगता है। महान कथाकार ऐसे जो युग प्रवर्तक आदि नामों से प्रसिद्ध होने वाले जो प्रेमचंद जी है, वो ऐसे ही फटे हुए जूते पहनकर फोटो खिंचवाने के लिए बैठ गए। लेखक प्रेमचंद के जूते से अपने जूते की तुलना करते हुए कहते हैं कि मेरा भी जूता कोई इस प्रकार अच्छा नहीं है, इतना ठीक नहीं है, ऊपर से अच्छा दिख रहा है। हाँ, भले ही उसका तला घिसा होगा, लेकिन हरिशंकर जी का जो जूता है वह फटा हुआ नहीं है और इससे अंगूठा घिसकर लहूलुहान हो गया है। तला घिसते घिसते पूरा पंजा घायल हो जाएगा पर अंगुली नहीं दिखेगी। उन्हें यह कहना है कि बाहरी दिखावा तो भी उनके जूते का अच्छा है, भले ही उसका तला घिस चुका होगा। लेखक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पाँव सुरक्षित है, अंगुली दिख रही है और अंगुली ढकी है, पर पंजा घिस रहा है। मैं तुम्हारी तरह फटा जूता नहीं पहन सकता। अब हरिशंकर परसाई जो है वह प्रेमचंद जी से कहना चाहते हैं कि मैं इनकी तरह फटा जूता नहीं पहन सकता। लेखक प्रेमचंद की मुस्कान के बारे में अनुमान लगाता है। और वैसे भी देखा जाए तो समाज में दिखावटीपन कितना भी रहे, गुणवत्ता का जो महत्व है वो उस दिखावटीपन का, उस दिखावे का बिल्कुल भी नहीं है। मूलतः इतने गुणों से युक्त ऐसे चरित्र, ऐसे व्यक्तित्व जो है प्रेमचंद जी, वो इन बातों को नज़रअंदाज करना स्वाभाविक है। तो यह लेखक कहते हैं कि मैं अनुमान लगाता हूँ और पूछता हूँ कि क्या होगी, क्या होरी का गोदान हो गया। अब यहाँ पर इस अगर हम परिच्छेद में देखेंगे तो लेखक उनसे, उन्होंने लिखे हुए जो भी संग्रह है उनके विषय में प्रश्न पूछते हुए यहाँ पर इस परिस्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। वह कहते हैं क्या होरी का गोदान हो गया, क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू खेत चर गई, या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकता, अथवा माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। तो यह मुस्कान वही मुस्कान मालूम होती है जो उनकी तस्वीर में उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। प्रेमचंद जी ने लिखे हुए अलग अलग काव्य संग्रह, अलग अलग संग्रहों में, कथा संग्रहों में जो भी कुछ दुखद प्रसंग आए हैं, उनकी वजह से शायद उन्होंने इन बातों को नज़रअंदाज कर दिया अपने दिखावे पर, अपने जूतों पर, अपने परिधान किए हुए कपड़ों पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए वह ऐसी ही अधूरी मुस्कान लेकर फोटो के लिए, तस्वीर के लिए बैठ गए। लेखक सोचते हैं कि प्रेमचंद का जो यह जूता है आखिर कैसे फट गया। बहुत बार ऐसा होता है कि मनुष्य कठिन परिस्थितियों से जूझते जूझते अपनी हालत खराब कर लेते हैं। क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए दूर तक चक्कर लगाते हुए लौटते थे। अब यहाँ पर लेखक सोचने लगे कि प्रेमचंद जी के साथ ऐसा क्या हुआ। अभी जूता फटना यह बहुत सरल और स्वाभाविक बात है देखी जाए तो, लेकिन तस्वीर खिंचवाते वक्त ऐसे प्रसिद्ध चरित्र अगर व्यक्तित्व ऐसे ही इसी अवस्था में बैठ गए तो सोचने वाले अलग अलग तरीके से इन बातों को अनुमानित करने का प्रयास करते हैं। लेखक फिर से कहते हैं या फिर किसी कठोर चीज़ पर ठोकर मारते मारते जूता फट गया। कठोर चीज़ अर्थात वह परिस्थिति भी हो सकती है। परिस्थितियों से झगड़ते झगड़ते इंसान की हालत खराब हो जाती है। तुम रास्ते के टीले या उस कठोर चीज से बचकर भी तो निकल सकते थे। यहाँ पर हरिशंकर जी कहना चाहते हैं कठिन परिस्थिति से आप बचकर निकल सकते थे। कठिन परिस्थिति से कभी कभी बचकर निकलना इसका अर्थ यह भी होता है कि उस परिस्थिति को उसी अवस्था में छोड़कर हम अपना रास्ता बदल लें। शायद समझौता ना कर पाना तुम्हारी कमजोरी थी, यानी इन्होंने ऐसी कठिन परिस्थिति के साथ समझौता नहीं किया, वो उससे जूझते रहे, उस परिस्थिति को कमज़ोर करने की कोशिश करते रहे। और वही नेम धर्म की कमज़ोरी जो होरी को ले डूबी थी। अब यह फिर से उन्होंने लिखे हुए कथा संग्रह से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। लेखक अनुमान लगाते हैं कि यह तुम्हारी उंगली इशारा कर रही है किस तरफ। अब उनके फटे हुए जूतों में से जो उंगली दिख रही थी उससे अनुमान लगाते हैं लेखक कि यह इशारा कर रही है। हम जिस वस्तु को, जिस किसी भी व्यक्ति को अगर घृणित समझते तो उसकी तरफ हाथ से नहीं पैर से इशारा करते हैं। और मैं तुम्हारी उंगली और मुस्कान का इशारा समझता हूँ। तुम उंगली छिपाकर तलवा घिसाए चलने वालों पर हंस रहे हो। तुम उंगली छिपाकर तलवा घिसाए, यानी जो लोग परिस्थितियों के सामने अपने घुटनों को टिका देते हैं उनके विषय में बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों पर हंस रहे हो क्योंकि तुम्हारी उंगली भले ही बाहर निकली हो पर पाँव तो बच रहा है। भले ही उनके जूतों से उनकी उंगली दिख रही है लेकिन उनका पाँव बचा है, यानी जिनका तलवा घिस रहा है वे चलेंगे कैसे। जिनका तलवा घिस रहा है यानी जूता, अगर उनका किसी इंसान का जूता अगर नीचे से ख़राब हो चुका है तो वह कैसे चलेगा। तो यह जो व्यंग भरी मुस्कान है इस बातों को अलग अलग नज़रिए से यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं हरिशंकर परसाई जी, और उन्हीं की तस्वीरें देखकर यहाँ पर कुछ सवालों से इन्हीं बात को स्पष्ट करने का भी प्रयास करते हैं। इस प्रकार यह पाठ का सारांश यहाँ पर समाप्त तो होता है, और पाठ में आए हुए जो मुहावरे हैं उनका हम अर्थ देखेंगे। अटक जाना यानी स्थिर हो जाना, कुएं के ताल में होना यानी बहुत गहराई में होना, न्योछावर होना अर्थात कुर्बान होना, हौसले पस्त करना अर्थात हतोत्साहित करना, बरकरार निकलना अर्थात बचकर निकलना, जूता आजमाना अर्थात अपमानित करना, रो पड़ना अर्थात पीड़ा महसूस करना, पहाड़ फोड़ना अर्थात कठिनाइयों पर विजय, तकादे से बचना अर्थात उधार मांगने वालों से बचना। पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार है। कनपटी यानी कान के निकट का भाग, कैनवस अर्थात मोटा कपड़ा जिससे जूते थैला बनाए जाते हैं, बेतरतीब अर्थात बिना किसी ढंग के, उपहास अर्थात मजाक उड़ाना, युग प्रवर्तक इसका अर्थ है युग की स्थापना करने वाले, लहूलुहान अर्थात घायल, क्लेश शब्द का अर्थ है दुख, इत्र इसका अर्थ है खुशबूदार द्रव्य, तीव्रता इसका अर्थ है तेजी, युग प्रवर्तक यानी नए युग की स्थापना करने वाले, ठाट अर्थ है शान, तगादा इसका अर्थ है उधार के पैसे मांगना, आवत जात इसका अर्थ है आते जाते, पनैया इसका अर्थ है जूते, बिसर गयो अर्थ है भूल गया, हरिनाम अर्थ है प्रभु का नाम, नेम धर्म धर्म के नियम या नियम और अर्थ, घृणित इसका अर्थ है घिनौना, बरकरार इसका अर्थ है बचाकर, तिनको शब्द का अर्थ है उनको। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार यहाँ पर प्रेमचंद के फटे जूते इस पाठ का सारांश समाप्त होता है। धन्यवाद।